परमाधव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम चौथा स्कंद 24वां अध्याय श्लोक संख्या 40।
अर्थ लिंगाय नभसे नमः अंतः बही आत्मने नमः पुण्याय लोकाय अमुष्मै भूरिवर्चसे। अर्थलिंगाय नभसे नमो अंत बहिरात्मने नमः पुण्याय लोकाय अमुष्मै भूरिवर्चसे। अर्थलिंगाय नभसे नमो अंतर्बहिरात्मने नमः पुण्याय लोकाय अमुष्मै भूरिवर्चसे।
अनुवाद एवं तात्पर्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की
अर्थ तात्पर्य लिंगाय प्रकट करने हेतु नाभसे आकाश को नमः नमस्कार अंतः भीतर बही तथा बाहर आत्मने अपने आप को नमः नमस्कार पुण्याय पुण्य कर्मों को लोकाय सृष्टि के लिए अमुष्मय मृत्यु के परे भूरी वर्चसे परम तेज।
अनुवाद दोहराएंगे।
हे भगवान
आप अपनी
दिव्य वाणी शब्दों को प्रसारित करके प्रत्येक वस्तु का वास्तविक अर्थ प्रकट करने वाले हैं। आप भीतर बाहर सर्वव्याप्त आकाश हैं और इस लोक में तथा इससे परे किए जाने वाले समस्त पुण्य कर्मों के परम लक्ष्य हैं। अतः मैं आपको पुनः पुनः नमस्कार करता हूँ। तात्पर्य वैदिक प्रमाण शब्द ब्रह्म कहलाता है। ऐसी अनेक वस्तुएं हैं जो हमारी अपूर्ण इंद्रियों के निरीक्षण से परे हैं, किंतु शब्द का प्रमाणिक साक्ष्य पूर्ण है। वेद शब्द ब्रह्म कहलाते हैं, क्योंकि वेदों का प्रमाण साक्ष्य ही परम ज्ञान है। इसका कारण है कि शब्द ब्रह्म या वेद भगवान का प्रतिनिधित्व करते हैं, किंतु शब्द ब्रह्म का वास्तविक सार तो हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन है। इस दिव्य ध्वनि के उच्चारण से भौतिक तथा आध्यात्मिक सारी वस्तुएं प्रकट होती हैं। यह हरे कृष्ण महामंत्र श्री भगवान से अभिन्न है। प्रत्येक वस्तु का अर्थ वायु के माध्यम से प्राप्त शब्द ध्वनि से प्रकट होता है। यह ध्वनि चाहे भौतिक हो या आध्यात्मिक, किंतु बिना शब्द ध्वनि के किसी बात का कोई अर्थ नहीं प्रकट होता। वेदों में कहा गया है, अंत बहिश्च तत् सर्वं व्याय नारायण स्थित। नारायण सर्वव्यापी है और वह भीतर तथा बाहर स्थित रहता है। इसकी पुष्टि भगवद्गीता में 13.34 इस प्रकार हुई है, यथा प्रकाश यत्येका कृष्णम लोकम इमं रवि क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृष्णम प्रकाशयति भारत। हे भरतवंशी, जिस प्रकार इस ब्रह्मांड को अकेला सूर्य प्रकाशित करता है, उसी प्रकार जीवात्मा तथा परमात्मा चेतना द्वारा संपूर्ण शरीर को प्रकाशित करते हैं। दूसरे शब्दों में आत्मा तथा परमात्मा की चेतना सर्वव्यापी है। आत्मा अपनी सीमित चेतना से संपूर्ण भौतिक शरीर में व्याप्त है और भगवान की परम चेतना सारे ब्रह्मांड में व्याप रही है। चूंकि आत्मा शरीर के भीतर स्थित है, अतः चेतना सारे शरीर में व्याप्त रहती है। इसी प्रकार परमात्मा या श्री कृष्ण इस ब्रह्मांड में व्याप्त हैं, अतः हर वस्तु व्यवस्थित रहती है। मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम, हे कुंती पुत्र, यह प्रकृति मेरे निर्देशन में कार्य कर रही है और समस्त चर तथा अचर प्राणियों को उत्पन्न करती है। भगवद्गीता 9.10। अतः शिव जी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वे कृपालु हों, जिससे केवल हरे कृष्ण महामंत्र के जप से ही प्रत्येक वस्तु को समझा जा सके। इस प्रसंग में अमुष्मय शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे उच्च लोक प्राप्त करने के बाद सर्वोत्कृष्ट लक्ष्य इंगित होता है। जो कर्मी हैं, वे अपने पूर्व कर्मों के फल के अनुसार स्वर्ग प्राप्त करते हैं और ज्ञानियों को भी वांछित फल मिलता है, किंतु अंततः भक्त ही जो साक्षात भगवान की संगति चाहते हैं वैकुंठ लोक या गोलक वृंदावन को जाते हैं। श्रीमद्भागवत में भगवान को श्रीमद् भगवत गीता में 10.12 भगवान को पवित्रम परमम कहा गया है। इसकी पुष्टि इस श्लोक में होती है। सुखदेव गोस्वामी ने कहा है कि श्री कृष्ण के साथ खेलने वाले ग्वाल बाल सामान्य जीव नहीं थे। विभिन्न जन्मों में अन्य पुण्य कर्मों को सिंचित करने से ही भगवान का साहचर्य प्राप्त होता है। चूंकि पवित्र आत्मा ही उन्हें प्राप्त कर सकते हैं, अतः वे परम शुद्ध हैं। ओम अज्ञानात्मिरांधस्य ज्ञानंजनाशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है आज की भागवत कक्षा में। आपके प्रिय मतलब सब थोड़ा आगे आ सकते हैं, जो पीछे बैठे वो लोग अंदर आ सकते हैं। तो चौथे स्कंद का 24वें अध्याय का 40वां श्लोक है। अर्थ लिंगाय नवसे नमो अंतर बहिरात्मने नमः पुण्याय लोकाय अमुष्मय गुरु वर्चसे। हे भगवान, आप अपनी दिव्य वाणी को प्रसारित करके प्रत्येक वस्तु का वास्तविक अर्थ प्रकट करने वाले हैं। आप भीतर बाहर सर्वव्याप्त आकाश हैं और इस लोक में तथा इससे परे किए जाने वाले समस्त पुण्य कर्मों के परम लक्ष्य हैं। अतः मैं आपको पुनः पुनः नमस्कार करता हूँ। तो भगवान शिव की ये बहुत ही सुंदर प्रार्थनाएं चल रही हैं और इस श्लोक में भगवान शिव ये व्याख्या कर रहे हैं कि किस ढंग से कैसे भगवान सभी पुण्य कर्मों के परम लक्ष्य हैं और इस परम लक्ष्य को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। कह रहे हैं कि आप अपनी दिव्य वाणी को प्रसारित करके प्रत्येक वस्तु का वास्तविक अर्थ प्रकट करने वाले हैं। अर्थ लिंगाय नभ से, कि आप प्रकट कर रहे हैं तात्पर्य को, प्रत्येक वस्तु के तात्पर्य को नभ से, आकाश को माध्यम बनाकर यानी कि शब्द ध्वनि के द्वारा। और नमो अंतर बहिरात्मने, आप अंदर भी स्थित हैं और बाहर भी स्थित हैं। नमः पुण्याय लोकाय, जितने पुण्य कर्मों के आप परम लक्ष्य हैं। अमुष्मय पूरी वर्चसे, और इससे परे किए जाने वाले समस्त पुण्य कर्मों के परम लक्ष्य हैं। तो श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद में भी सूत गोस्वामी जी नैमिषारण्य में इकट्ठे ऋषियों को बताते हैं कि वासुदेवा परावेदा वासुदेवा परामखा वासुदेवा परायोगा वासुदेवा पराक्रिया वासुदेवा परमं ज्ञानम वासुदेवा परमं तपा वासुदेवं परो धर्मा वासुदेवा परागति। कि भगवान श्री कृष्ण ही सभी वैदिक ज्ञान के द्वारा जानने योग्य हैं, भगवान श्री कृष्ण ही सभी यज्ञों के द्वारा जानने योग्य हैं, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ही ये सारे कर्मकांड उत्पन्न होते हैं, भगवान श्री कृष्ण ही परम धर्म है, भगवान श्री कृष्ण ही परम तपस्या के द्वारा जाने जा सकते हैं और भगवान श्री कृष्ण ही परम गति है। तो सभी पुण्य कर्मों के जो परम लक्ष्य हैं वो भगवान है। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं यत क्रोशी यद अशनासी यद जदोसी ददासी यद, कि अब जो कुछ भी दो, जो कुछ भी अर्पण करो, मुझे अर्पण करो। आजकल एक बहुत ही तथाकथित मायावादी गुरु हैं। तो जब हम भगवद गीता डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे तो उनसे उनके किसी शिष्य से संपर्क हुआ, तो वो कह रहे थे कि हमारे संस्था की सबसे अच्छी बात यह है कि हम दान बिल्कुल नहीं मांगते, सबसे अच्छी बात है, हम बिल्कुल दान नहीं मांगते। तो भगवान को दान की क्या आवश्यकता है, भगवान तो देने वाले हैं। तो देना है तो गरीब बच्चों को दो, उनको खाना खिलाओ, उनको कपड़े दो, ये देना बनता है। भगवान को देकर क्या है, तो ये हमारे संस्था की सबसे अच्छी बात है कि हम दान नहीं लेते। तो उनको मालूम ही नहीं है कि जो दान का लक्ष्य है वो क्या है, सारे पुण्य कर्मों का लक्ष्य है वासुदेव, उसको जानते नहीं। पुण्य कर्मों में लगे हैं, लोगों को खाना खिला रहे हैं, कपड़े बांट रहे हैं, ये पुण्य कर्म है, लेकिन ये कृष्ण की तरफ केंद्रित नहीं है। तो उससे हम अपने परम गति परम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो बड़े गर्व से वो बोलते हैं कि हमें गर्व से कहना चाहिए कि हमारे यहाँ पे हम सुविधा देते हैं बद जीवों को कि अपना शुद्धिकरण करें, कि जो कुछ वो धन अर्जन कर रहे हो भगवान को अर्पित करें, ये बहुत बड़ी सेवा करने का एक अवसर है। तो वो लोग कहते नहीं, ये हमारे यहाँ की पॉजिटिव पॉइंट है कि हम दान नहीं लेते। तो भगवान शिव जी यहां कह रहे हैं कि आप परम लक्ष्य हैं, आप पुण्य कर्मों के परम लक्ष्य हैं और आप परम पवित्र हैं। शंकराचार्य ने कहा है नारायणो परो व्यक्त्या, कि भगवान श्री कृष्ण इस भौतिक जगत से बिल्कुल परे हैं। अब ऐसी वस्तुएं, ऐसे विषय वस्तुएं जो कि इस भौतिक जगत से परे हैं, उनके बारे में हम कैसे जान सकते हैं? तो उनके विषय में जो प्रमाण है वो सबसे प्रमाणिक प्रमाण क्या है, शब्द प्रमाण। केवल वेदों के द्वारा ही हम भगवान के विषय में जान सकते हैं, क्योंकि वेद स्वयं भगवान की वाणी है। यहां पे कहा गया है कि यह हरे कृष्ण महा शब्द का प्रमाणिक सबसे पूर्ण है। वेद शब्द ब्रह्म कहलाते हैं, इसका कारण यह है कि शब्द ब्रह्म या वेद भगवान का प्रतिनिधित्व करते हैं, क्योंकि जो वेद हैं वो तीन गुणों से परे हैं, वो अपौरुषीय हैं। वेद किसी साधारण व्यक्ति के द्वारा नहीं लिखे गए हैं। बताया जा रहा है कि सारे के सारे वैदिक शास्त्रों का जो सार है वो क्या है, हरे कृष्ण महामंत्र। जैसे कि ब्रह्मा जी ने कलि सत्र में बताया, इति षोडशकम नामनम कलि कल्मष नाशनम ना तो परो तर्पाय सर्व वेदेषु दृश्यते। सारे के सारे वेद उन्होंने छानबीन कर ली, उसके बाद एक हरे कृष्ण महामंत्र प्राप्त हुआ। भगवान गीता में कह रहे हैं वेदेश्च सर्वे अहमेव वेद्यो, कि केवल वेदों के माध्यम से ही सब वेदों का लक्ष्य है मुझे जानना, और सब वेदों का सार है हरे कृष्ण महामंत्र। यानी कि केवल हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा ही हम भगवान श्री कृष्ण को जान सकते हैं। इसीलिए बताया गया हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम, कि केवल हरि नाम के माध्यम से ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। केवल वेद के माध्यम से ही हम भगवान के बारे में जान सकते हैं, उनको प्राप्त कर सकते हैं। और सारे वेदों का सार है ये शब्द ध्वनि हरे कृष्ण महामंत्र।
श्री राधा राधिका रमन भगवान की, श्री गौर निताय जी की।
जैसे कि चैतन्य महाप्रभु जब वाराणसी में गए तो वहां पे प्रकाशानंद सरस्वती जो मायावादी सन्यासी थे अपने 10,000 शिष्यों के साथ वहां पे आए हुए थे। तो वहां पे एक ब्राह्मण ने प्रकाशानंद सरस्वती के आगे चैतन्य महाप्रभु का गुणगान किया कि चैतन्य महाप्रभु ऐसे सन्यासी हैं जो हरि नाम लेते हैं, नाचते गाते हैं। तो जब ये सुना तो प्रकाशानंद सरस्वती हंसने लगे, उन्होंने उनका मजाक उड़ाया, कहे ये कौन से सन्यासी हैं, ये तो भावुकता है। सन्यासी का अर्थ ये नहीं होता कि भावुक होकर सड़कों पर नाचें, सन्यासी तो वेदांत का अध्ययन करते हैं। तो उस ब्राह्मण को बहुत बुरा लगा। तो ब्राह्मण आके उन्होंने चैतन्य महाप्रभु से कहा और कहा कि ये जो मायावादी सन्यासी है ये क्यों नहीं कृष्ण का नाम ले पाते। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मायावादी कृष्ण अपराधी, ये कृष्ण के अपराधी हैं। और फिर महाप्रभु ने पद्म पुराण का वो श्लोक विदित किया, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण मुक्तो नित्य शुद्धो अभिनत्व नाम नामी, कि ये जो नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, कि ये नाम है ये हरि नाम प्रभु है, अभिनत्व नाम नामी, ये नामी से अभिन्न है, क्योंकि मायावादी कृष्ण के अपराधी है इसीलिए वो हरि नाम भी नहीं ले सकते। फिर भी महाप्रभु ने कृपा करके उनका उद्धार करने के लिए महाप्रभु वहां पे गए और फिर वहां बैठे जहां पे सब लोग अपना पद प्रक्षालन करते हैं, पैर धोते थे, महाप्रभु के शरीर से दिव्य कांति निकल रही थी। प्रकाशानंद सरस्वती आए, उन्होंने उनको उठाया और अपने पास आए, उनको मंच पे बिठाया और कहा कि आप तो साक्षात नारायण प्रकट हो रहे हैं, आपके शरीर से इतनी दिव्य कांति प्रकट हो रही है।
کیا آپ نارائن ہیں اور پھر کیوں اس طرح پاگلوں کی طرح آپ ہری نام لے رہے ہیں, ہری کرشنا منتر کر رہے ہیں؟ تو آپ سب جانتے ہیں کہ مہاپربھو نے کیا کہا,
پربھو کہے سن شری پاد ای ہر کارن گرو مورے مورکھ دیکھی کری لشاسن.
کہ پربھو نے کہا کہ سن شری پاد ای ہر کارن, اس کا کیول ایک ہی کارن ہے. کیا کارن ہے؟
گرو مورا مورکھ دیکھی,
میرے گرو ایشور پریپاد نے مجھے کیا دیکھا, مورکھ روپ میں دیکھا اور کہا اور میرے اوپر شاسن کیا. بولے مورکھ تمہیں توما نہ ایک ویدانت ادھیکار کرشن منتر جپ سدا ای منتر سار.
کہ تم مورکھ ہو, تمہارا ویدانتوں کے اوپر اور کوئی ادھیکار نہیں ہے, کیول کرشن منتر کا ہمیشہ جپ کرو, یہی سارے منتروں کا سار ہے.
کرشن منتر ہیتے ہبے سنسار موچن کرشن نام ہیتے پاوے کرشن رچرن.
کہ کرشن کا نام لیتے ہی سارے کے سارے سنسار کا شدھیکرن ہو جائے گا اور کرشن نام پاتے ہی ہمیں کرشن کے چرنوں کی پراپتی ہوگی.
نام بنو کالی کالے نہیں آر دھرم سرو منتر سر نام ای شاستر مرم.
کہ اس کلیوگ میں اور کوئی دھرم نہیں ہے, کیول ہری نام کا جپ ہے اور یہ سارے کے سارے شاستروں کا مرم ہے.
تو چیتنیہ مہاپربھو سوئم بھگوان ہیں جو کہ نمائی پنڈت کے روپ میں وکھیات تھے, بڑے بڑے پنڈتوں کو انہوں نے ہرا دیا. اب وہی نمائی پنڈت کہہ رہے ہیں کہ میرے گرو مہاراج کہہ رہے ہیں کہ میں سب سے بڑا مورکھ ہوں, میرا ویدانت کے پر اور کوئی ادھیکار نہیں ہے, سرو مرم سار یہی ہے کہ میں ہرے کرشن مہا منتر کا کیرتن کروں.
ہرے کرشنا 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 ہرے ہرے, ہرے رام 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 ہرے ہرے.
تو سوئم بھگوان شری کرشن آ رہے ہیں ہم سب کو سکھانے کے لیے کہ یہ ویدک ادھیان کا کیول سار یہی ہے کہ ہم بھگوان کے پرتی پریم وکست کر سکیں. شریمد بھاگوتم کے 11 اسکند میں بتایا جا رہا ہے کہ شبد برہمنے نشنا تم نان نشنیات پرے یدی شرمستسے شم فلم ادھینو میوہ رکشتا.
کہ شبد برہمنے نشناتم, سارے کے سارے ویدک شاستروں میں بہت شردہ ہے, نان نشنیاتم پرے یدی, لیکن کرشن کے پرتی کوئی شردہ اتپن نہیں ہوئی ہے.
تو ایسے ویدک شاستر ادھیان کیا مطلب ہوا؟
شمستسے شم فلم, اس کا جلا پورا کا پورا جو فل ہے وہ کیا ہے؟ کیول شرم. اور یہ شرم کیسا ہے؟ اس ان مورکھوں کو جیسا شرم ہے, ادھینو میو رکشتا, ایسے گائے کی رکشا کرنا جو دودھ نہیں دیتی.
تو کیا فائدہ ایسے گائے کا ہم پالن کریں جو دودھ نہیں دیتی؟
سارے کے سارے ویدک شاستر پڑھ لیے لیکن ہم نے بھگوان کے پتی روچی اتپن نہیں کی, تو یہ کیول شرم ہے.
اور اسی بات کو چیتنیہ مہاپربھو نے چیتنیہ بھاگوت میں بتایا کہ ہے نہ کرشن نام یار نہیں رتی متی پادیا اور سرو شاستر تاہر درگتی.
کہ اگر سب نے سارے شاستروں کو پڑھ لیا ہے لیکن اس کا بھگوان نام کے پرتی کوئی روچی اتپن نہیں ہوئی, تاہر درگتی, اس کی درگتی ہوگی.
اور پھر یہ بتایا گیا ہے کہ جو ویدک شاستروں کو ادھیان کر کے اور ویدک شاستروں کو سکھاتا ہے پڑھاتا ہے بنا کرشن کے نام کے, تو اس کو بولا گیا ہے گدھا. گدھے کے سمان ہے, سارے کے سارے شاستروں کو بھار کے روپ میں اٹھا کے جا رہا ہے. کیونکہ سارے شاستروں کا سار ہی یہی ہے کہ ہم ہرے کرشن مہا منتر کا جپ کریں. تو کئی باری باہر بڑے بڑے پنڈت ملتے ہیں, جب ہم جگہ گئے تھے یہاں پہ کمبھ کے میلے میں, بڑے بڑے پنڈت پرگاڑھ پنڈت سنسکرت میں بڑے بڑے شلوک بول رہے ہیں لیکن ہرے کرشن مہامنتر کا جپ نہیں کر رہے. تو وہ سوچتے ہیں کہ ہم لوگ بہت اتکرشٹ ہیں اور یہ لوگ ابھی مورکھ ہیں, یہ کیول ناچتے کودتے رہتے ہیں. لیکن سوئم بھگوان نے یہی کاریہ کیا کہ وارانسی کی گلیوں میں وہ ناچے کودے نمائی پنڈت ہونے کے بعد بھی. تو یہ سارے منتروں کا سارے ویدوں کا یہی سارا یہی ہمیں کرشن کے پاس لے جائے گا. شیلا روپ گوسوامی جی نام اشٹکم میں بہت سندر سندر پرارتھنائیں کرتے ہیں. تو ان کی پہلی پرارتھنا روپ گوسوامی جی جانتے ہیں کہ یہ ہری نام اتنے کرپالو ہیں کہ ہم سب بد جیووں کا ادھار کرنے کے لیے اس بھوتی جگہ پہ پرکٹ ہوئے ہیں. شیلا بھکتی سانس سروش ٹھاکر مہاراج کہتے ہیں کہ ہم لوگ تو اس بھوتی جگت میں ہیں, ادھیاتمک جگت کے وشے میں کیسے جانیں گے؟ تو ادھیاتمک وستوؤں کو وشیوں کو تین مادھیم کے دوارا پرکٹ کیا جاتا ہے, وہ ہے بھگوان کا نام, بھگوان کے ارچ وگرہ اور بھگوان کے پرتندھی گرو.
गुरु अर्च विग्रह और भगवान नाम के द्वारा ही हम भगवान के बारे में जान सकते हैं। तो इन सब में सबसे कृपालु भगवान नाम है। चैतन्य महाप्रभु ने भी अपने शिक्षाष्टकम में अर्च विग्रह की पूजा करने को नहीं कहा, उन्होंने क्या कहा कि केवल हरि नाम। और जो नवदा भक्ति के भी अंग हैं, नवदा भक्ति के सारे अंग नाम उच्चारण पर ही केंद्रित है। अगर हम नाम का उच्चारण कर रहे हैं तभी हम अर्चना कर सकते हैं, तभी स्मरण हो सकता है, तभी पाद सेवन। तो केवल नाम तार मध्य नाम संकीर्तन सबसे जो श्रेष्ठ है वो है नाम संकीर्तन। तो अब पहले ही नामष्टकम में बहुत सुंदर रूप गोस्वामी जी बोले हैं, निखिल श्रोते मौलिरत्न माला ध्योते निराजित पाद पंक जांत आय मुक्त कोलेर उपाश्यमानाम परित स्वत्वम हरि नाम संश्रयामि। तो करे निखिल श्रुति मौलि रत्नमाला ओ हरि नाम। निखिल श्रुति जितनी भी श्रुतियां हैं, जितने भी उपनिषद हैं, मौलि रत्नमाला जो कि एक हार के समान है, बहुत ही अच्छे अच्छे हीरों के द्वारा जड़ित ये रत्नों की जो माला है, वो सब ये जो जितने उपनिषद हैं वे सब सुंदर रत्नों से जड़ित माला के समान हैं। लेकिन ये कार्य क्या कर रहे हैं, द्युति निराजित पद पंक जानत वो हरिनाम प्रभु के चरण कमलों के अंत उनके जो नाखून हैं उनकी वो सेवा में लगे हुए हैं। जितने भी उपनिषद हैं उनकी सुंदर जो माला है वो हरिनाम प्रभु के चरण कमलों के नाखनों के जो अंत हैं उनकी वो सेवा कर रहे हैं। इस तरह से जितने के सारे वैदिक श्रुतियां आपके चरणों का गुणगान कर रहे हैं, जितने भी योगी हैं मुनिगण हैं और जितने भी मुक्त जीव हैं वो हरिनाम प्रभु की सेवा में लगे हुए हैं। इसलिए मैं पूर्ण रूप से आपकी शरणागत ग्रहण शरण ग्रहण करता हूं। तो हम देख सकते हैं इस संसार में भी हमें जब कोई भी किसी वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना है तो हमें शब्द के माध्यम पर निर्भर करना पड़ता है। शेयर मार्केट में जाते हैं, इस शेयर का क्या प्राइस चल रहा है, खेल के मैदान में क्रिकेट में क्या स्कोर चल रहा है, विद्यालय में जाते हैं अध्यापक बोल रहा है, शिष्य सुन रहा है, छात्र सुन रहा है। तो हर जगह शब्द माध्यम है ना, लेकिन जो ये भौतिक शब्द है ये शाश्वत नहीं है। भौतिक शब्द ध्वनि शाश्वत नहीं है, ये दिव्य शब्द ध्वनि है। दिव्य शब्द ध्वनि शाश्वत है और जो दिव्य शब्द है ये अपने सूत्र से अभिन्न है ना। श्री प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि एक बद्ध जीव है, बद्ध जीव अपने नाम से अलग है क्योंकि बद्ध जीव अद्वैत नहीं है, उसका शरीर अलग है और आत्मा अलग है ना। हम किसी के नाम को पुकारेंगे तो केवल नाम लेने से वो व्यक्ति वहां प्रकट नहीं हो जाएगा कि उसका नाम नामी में अंतर है, उसके शरीर और आत्मा में अंतर है। लेकिन भगवान क्या है, अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम, अद्वैत हैं, उनके शरीर और आत्मा में कोई अंतर नहीं है। तो जैसे ही हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जैसे ही हरे कृष्ण महामंत्र ले रहे हैं हम स्वयं कृष्ण का संग कर रहे हैं, कृष्ण वहां पे प्रकट हो रहे हैं। इसको समझने का एक और तरीका है, यहाँ पे शिव जी कह रहे हैं कि बहिरंत आत्मने, कि भगवान सर्वव्यापक हैं, अंदर भी हैं और बाहर भी हैं। भगवान ने गीता में भी कहा है कि माया तथा इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्ति ना, अव्यक्त रूप से मैं सब जगह व्याप्त हूं। लेकिन ये भी कहा जा रहा है पद्म पुराण में, यत्र गायन्ति मद भक्त तत्र तिष्ठामि नारद, कि जहां जहां मेरे भगवान मेरे भक्त मेरा गुणगान करते हैं मैं वहीं पे रहता हूं। तो इसको हम इस ढंग से समझ सकते हैं कि भगवान गीता में कह रहे हैं सर्वता श्रुति मद लोके, कि हर जगह मैं सर्वता पड़ी पादम, हर जगह मेरे पैर हैं, हर जगह मेरी आंखें, हर जगह मेरे खान हैं। तो जहां भी भक्त लोग प्रेम और भक्ति से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, प्रेम और भक्ति से अगर भगवान का नाम लेंगे तो भगवान वहां प्रकट हो जाते हैं। क्योंकि भगवान के कान सब जगह हैं और यहां पे सुनते हैं तुरंत प्रकट हो जाते हैं। अगर यहाँ पे हम किसी एक व्यक्ति का नाम लें जो कि इस समय यहाँ पे ना हो
और कहीं बॉम्बे में हो तो वो हमारे सामने प्रकट नहीं होगा, क्योंकि उसके कान सब जगह वो सर्वव्यापक नहीं है। लेकिन भगवान सर्वव्यापक है और भगवान अपने भक्तों से संपर्क स्थापित कर लेते हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद इसका एक उदाहरण देते हैं कि जिस तरह से लकड़ी के अंदर अग्नि रहती ही रहती है, लेकिन अपने आप वो अग्नि नहीं जलती, उसको अग्नि दिखानी पड़ती है, उसी ढंग से भगवान सर्वव्यापक है। लेकिन भगवान प्रकट कैसे होते हैं? जैसे भगवानों का नाम लेंगे भगवान प्रकट हो जाते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि जब प्रहलाद महाराज अपनी माँ के घर में थे तो उन्होंने अपने गुरु नारद मुनि से संदेश सुना, उन्होंने अपने गुरु के दर्शन तक भी नहीं किए, केवल भागवतम का संदेश सुना। और नारद मुनि ने संदेश दिया था कि हमेशा कृष्ण का भजन करो, हमारे हमेशा कृष्ण के नाम का प्रचार करो। इसी आज्ञा का पालन प्रहलाद महाराज करते रहे और फिर क्योंकि वो हमेशा कृष्ण का नाम ले रहे थे तभी खंभे से नरसिंह भगवान प्रकट हुए। तो ये है हरि नाम में शक्ति। बताया गया है कि इस भगवान नाम के द्वारा हम अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि मैं पहले बता रहा था कि कोई भी हमने भौतिक वस्तु के विषय में भी जानना है तो हमें शब्द ध्वनि पर निर्भर करना पड़ता है। तो ये दिव्य भगवान के विषय में भी जानने के लिए हमें केवल शब्द माध्यम है, शब्द ब्रह्म एक माध्यम है जिसके द्वारा हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। एक बार अद्वैताचार्य जी शिवास आंगन में आए और वहां पे चैतन्य महाप्रभु भी थे, तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का बहुत गुणगान किया तो महाप्रभु उनसे प्रसन्न हुए और महाप्रभु ने अपने चरण कमल उनके शीर्ष पे रखे और फिर महाप्रभु ने कहा कि मैं तुम्हारे कारण ही इस जगत में प्रकट हुआ हूं। और फिर उन्होंने कहा कि मैं घर घर जाके हरि नाम का प्रचार करूंगा और मैं ऐसी भक्ति का वितरण करूंगा जिसको पाने के लिए स्वयं शिव जी और ब्रह्मा जी को घोर तपस्या करनी पड़ेगी। तो क्या उन्होंने प्रचार किया? घर घर जाकर उन्होंने हरि नाम दिया। घर घर जाकर छोड़ो, वो तो झारखंड के जंगल से गुजर रहे थे, पशुओं को भी उन्होंने हरि नाम दे दिया। जब वो झारखंड के जंगल से गुजर रहे थे तो वो स्नान कर रहे थे गंगा में, तो नदी में स्नान कर रहे थे, क्षमा करे, तो सारे के सारे हाथियों का झुंड वहां पर आ गया। तो जब हाथियों का झुंड आ गया वहां पे तो चैतन्य महाप्रभु ने पानी लिया और एक हाथी के ऊपर फेंका, बोले बोलो कृष्ण बोलो कृष्ण। तो हाथी हो करके फुंकारा उसने और सारे के सारे हाथी कृष्णा कृष्णा करके चिल्ला रहे हैं। और उसके बाद वो जब बाहर आए तो एक शेर सोया पड़ा था, शेर को उन्होंने लात मारी, बोला बोलो कृष्णा बोलो कृष्णा, और शेर भी उठ खड़ा हुआ और नाचने लगा कृष्णा कृष्णा कहकर। और वहां का दृश्य इतना मधुर हो गया कि शेर और खरगोश आपस में गले मिल रहे हैं, आलिंगन कर रहे हैं, एक दूसरे को चूम रहे हैं, कहां ऐसा संभव है, और सबके सब उन्मत्त हो गए हैं कृष्ण प्रेम में। तो ये है हरि नाम की शक्ति। हम कह सकते हैं कि हमारे में तो इतनी शक्ति नहीं है और हम ये कर भी नहीं सकते, हम तो शेर तो क्या बार हमारा जो पपी है उसको भी उसको हम प्रयास करते रहे तभी उठ के वो नाचेगा नहीं, जैसे हम उसको प्रसाद खिला सकते हैं और उसको हरि नाम दे सकते हैं, हमारे में इतनी शुद्धता नहीं है। लेकिन शिला प्रभुपाद में ये शुद्धता थी। शिला प्रभुपाद जब विदेशों में गए तो शिला प्रभुपाद ने बोला कि जैसे चैतन्य महाप्रभु ने झारखंड के पशुओं को हरि नाम दिया तो मैंने भी पशु तुल्य व्यक्तियों को ये हरि नाम दिया है। तो वो हिप्पी सब पशु तुल्य ही थे, तो उनको भी उन्होंने कृष्ण प्रेम में पागल कर दिया और सबको कृष्ण प्रेम बांटा। तो इस हरि नाम में इतनी शक्ति है कि अगर हम इसको ध्यान पूर्वक जब भी ना करें तब भी ये हमारा उद्धार कर देगा और हमारे पापों के पहाड़ को मुक्त कर देगा। ये स्तुति रूप गोस्वामी जी दूसरे नाम अष्टकम में कर रहे हैं, आप सुनिए। जय नाम धेया मुनि वृंद गेय हे जन रंजनाया परमक्षिका कृते त्वम आनंदादपि माना तम अनादरादपि माना गोदीरताम निखिलोग्र तापतलिम विपुमलाक्षी। कि हे हरि नाम आपकी जय हो, जो कि बड़े बड़े ऋषियों ने आपको गाया है और केवल जीवों की प्रसन्नता के लिए ही आपने ये शब्द ध्वनि का रूप ग्रहण किया है। अगर कोई भी व्यक्ति आपका एक बारी भी नाम जप कर लेता है त्वम अनादर अपि मानक उदीरताम, अनादर से भी, यानी कि हरि नाम का केवल आदर पूर्वक जप करेंगे तभी हमें इसका फल प्राप्त होगा।
अनादर से भी अगर एक व्यक्ति ने एक बारी भी आपका नाम का जप कर लिया है तो आप क्या करोगे, निखिलोग्रा तापतिलाम विमकुलामशी, कि जितने भी जितने उसके ताप हैं, उसके दुख हैं, पहाड़ों के पहाड़ ऐसे दुखों को, दुखों के पहाड़ों को जो कि उसके पापों के कारण है, उसको आप खत्म कर दोगे। ये इतना महत्व है, ये देखिए भगवान की कितनी कृपा है, कितनी कृपा है। बताया गया है उपनिषदों में, ना तो चक्षुगस्ति ना वाक ना मना, भगवान इस भौतिक जगत से परे हैं, ना हमारी आंखें जा सकती हैं, ना वाणी जा सकता है, ना मन के द्वारा मन का चिंतन कर सकते हैं। वही भगवान दिव्य शब्द ध्वनि के रूप में अवतरित हुए हैं, कली काले नाम रूपी कृष्ण अवतार, और उन कृष्ण नाम का हमने अनादर पूर्वक एक बारी भी बोल दिया, हरे कृष्ण कह दिया, कृष्ण कह दिया, तो हमारे पापों के पहाड़ और कितने कितने दुख है वो सब खत्म कर दिए जाते हैं। तो भगवान की इसी महिमा को देखकर, इसी कृपा को देखकर यहाँ पे भगवान शिव कह रहे हैं कि मैं पुनः पुनः आपको नमस्कार करता हूँ। हमें भी भगवान की इस कृपा को समझना चाहिए कि कितनी बड़ी कृपा है, हमें बार बार इस भगवान को नमस्कार करना चाहिए, गुरुजनों को नमस्कार करना चाहिए जिनके माध्यम से हमें हरि नाम प्राप्त हुआ, बार बार नमस्कार करना चाहिए। क्या देखिए कुछ तुच्छ जीव है, हमारा भौतिक अस्तित्व पता नहीं कब से चल रहा है और कितने 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 पाप हमारे इकट्ठे हो गए हैं, हर क्षण हम पाप कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हरिनाम इतने कृपालु हैं, एक नाम भी ले लिया अनादर पूर्वक भी, मजाक उड़ाते हुए भी, हमारे कई पापों के सारे पापों का पहाड़ मुक्त हो जाता है। और यहाँ पर आगे नाम अष्टकम में रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं कि ये जो हरि नाम के द्वारा हमें फल प्राप्त होता है, जो सारे के सारे पापों से हमें मुक्ति मिलती है, ये वो उन ज्ञानियों को भी प्राप्त नहीं होता जिन्होंने ब्रह्म ज्योति को प्राप्त कर लिया है। इसकी महिमा इतनी महान है। तो कलयुग में अगर हम ध्यान रूप नाम भी जप नहीं कर पा रहे, नामाभास के आधार पर भी हमें मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। शुद्ध नाम की तो बात छोड़ो, केवल नाम का आभास भी हो गया तो इस भौतिक कलमश से मुक्त हो जाएंगे। तो ये हरि नाम की कृपा है। और ये हरि नाम प्रभु, हरि नाम प्रभु जो हैं कृष्ण से अभिन्न हैं, इनका एक व्यक्तित्व है, चैतन्य रस्य विग्रह, ये रूप है इनका, इनके साथ हमारा आदान प्रदान होता है। हम जब कह रहे हैं हरि नाम प्रभु की शरण ग्रहण करना, तो हरि नाम प्रभु हैं, उनकी हमें शरण ग्रहण करनी चाहिए। तो हम सबको ये जो दिव्य ध्वनि प्राप्त हुई है, ये गुरु के माध्यम से प्राप्त हुई है। गुरु एक ट्रांसमीटर है जो कि आध्यात्मिक शब्द ध्वनि को इस भौतिक जगत में ट्रांसमिट करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं इस भौतिक जगत में भी अमेरिका में कुछ खेल चल रहे हैं तो वो ट्रांसमिट होता है इस भारत में, हम यहीं बैठे बैठे उनको देख सकते हैं। इसी ढंग से गुरु निरंतर आध्यात्मिक जगत के संपर्क में रहते हैं और वो आध्यात्मिक शब्द ध्वनि हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। गुरु वो माध्यम है। तो देखिए सिग्नल बहुत स्ट्रांग है, ट्रांसमीटर बहुत स्ट्रांग है, कमजोरी कहां पे है? रिसीवर में। एंटीना कमजोर है। सब कुछ होते हुए भी हमारे अंदर कोई परिवर्तन हमें लगता हुआ ही नहीं है, किए जा रहे हरि नाम, कोई रुचि उत्पन्न नहीं है। सिग्नल बहुत स्ट्रांग है, ट्रांसमीटर भी स्ट्रांग है, लेकिन इस रिसीवर को हमने ठीक करना पड़ेगा। तो इस रिसीवर के अंदर जो सिग्नल में डिस्टॉर्शन लाता है वो क्या है, कहां से हमारे डिस्टॉर्शन आते हैं? हमारे अनर्थ, हमारा मन जो हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, तो उस कारण से हम इस सिग्नल को सही ढंग से प्राप्त नहीं कर पाते। भक्ति सांसद ठाकुर महाराज कहते हैं कि चैंटिंग इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ कृष्ण सेवा। कृष्ण सेवा, जीवे स्वरूप हुए कृष्ण नित्य दास, हम सब कृष्ण के नित्य दास हैं, तो कृष्ण को हमें दास को जानना चाहिए कि हमारे मालिक कृष्ण को सबसे उत्तम सेवा कौन सी लगती है, वो है चैंटिंग। तो इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि गोलोकरण प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन, गोलोक धाम में भी यही हो रहा है, चैंटिंग हो रही है। ये मत सोचिए कि यहां तो किसी ढंग से मेहनत कर लूंगा सोलह माला का जब एक बारी धाम चला जाऊं फिर देखूंगा। मुड़ के नहीं देखूंगा इसकी तरफ। हमारे कुछ भक्त हैं, बोलते हैं चौथा ताप है ये, तीन क्लेश तो होते हैं ना, आदि भौतिक आध्यात्मिक आदि दैविक, बोले चौथा क्लेश कहां से आ गया ये,
ہوتا ہی نہیں پورا, گھسیٹ گھسیٹ کے گھسیٹ گھسیٹ کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں, کب ختم ہوگا, پریم کے کارن نہیں آ رہا. تو کہہ رہے ایک بار یہ محنت کر لوں, اسی ڈھنگ سے مکت ہو گیا پھر دیکھوں گا میں نے اس کی طرف مڑ کے. ایسا نہیں ہے, وہاں پہ بھی یہی شبد ونی یہی کیرتن چل رہا ہے, یہ ہمارا فیملی سانگ ہے, سب مل کے یہی گاتے رہتے ہیں, کرشن بھی یہی گا رہے ہیں, گوپیاں بھی یہی گا رہے ہیں, گوال بال بھی یہی کھا رہے ہیں, یہ گانا چلتا جا رہا ہے وہاں پہ. تو سب سے اتم سیوا کرشن سیوا ہے یہ چینٹنگ. اسی لیے شری پربھوپاد نے کیا کہا کہ جتنے بھی ششیوں کو میں نے آگیاں دی ہیں سب سے سروتم آگیا ہے کہ 16 مالا کا دھیان پوروک جپ. کیول اسی کے دوارا ہم اپنے جیون کے لکش کو پراپت کر سکیں گے. ہم لوگ نہ ونوں میں جا سکتے ہیں, نہ بڑے بڑے یگ کر سکتے ہیں, نہ کوئی دھیان لگا سکتے ہیں, اور کچھ سمبھو تو ہے نہیں. ہرے نام ہرے نام ہرے نام ایو کیولم, اس کو بھی ہم ٹوٹے پھوٹے ڈھنگ سے لیں تو کیسے ہمارا بھوتک جگت سے چھٹکارا ہوگا. تو پورا دھیان دینا ہے, کیونکہ جب شری پربھوپاد یہاں تاتپر میں بتا رہے ہیں کہ ہرے کرشن مہامنتر کے دوارا ہم سبھی بھوتک تتھا آدھیاتمک وستوں کے وشے میں گیان پراپت کر پائیں گے. کئی بار جب ہرے کرشن مہامنتر کا جپ کر رہے ہوتے ہیں تو طرح طرح کی سمسیاں ہمارے من میں چل رہی ہوتی ہیں, طرح طرح کی سمسیاں, ویوسائے کی سمسیاں, گھریلو سمسیاں, کچھ سمبند خراب ہو گئے کسی کے ساتھ اس کی سمسیاں, طرح طرح کی پیڑا اندر چل رہی ہوتی ہے اور دھیان نہیں لگ رہا ہوتا. لیکن سبھی سمسیاؤں کا سمادھان یہ دھیان پوروک جپ کرنا ہے, اور کوئی سمادھان نہیں ہے. اور اسے دھیان پوروک جپ کو کرتے کرتے جب ہم دھیان پوروک جپ کریں گے تو یہ بھکتی لتا جو بیج ہے اس کا پوشن ہوگا, اور جب یہ پوشن ہوگا تو یہ وکست کرتے ہوئے پورے برہمانڈ کو بھیدتے ہوئے ورجا ندی سے ہوتے ہوئے کہاں جائے گی, پرم ویوم رادھا کرشن کے چرنوں میں. یہ ہری نام اتنا مہان ہے کہ پدم پران کے سرشٹی کھنڈ میں ورنن آتا ہے کہ سوئم گایتری منتر وہ ایک گوپی بن جاتے ہیں اور رادھا کرشن کی سیوا کرتے ہیں. تو ایک گایتری منتر بھی ہرے کرشن مہامنتر کی سیوا کرتا ہے. تو اس ہرے کرشن مہامنتر میں سارے منتر سملت ہیں, اور کسی منتر کے اچارن کرنے کی آوشکتا نہیں ہے. کیول ہرے نام, ہرے نام ایو کیولم, بس کیول دھیان پوروک جپ کرنا ہے. اسی ہری نام میں بھگوان کا روپ, بھگوان کے گن, بھگوان کی کریائیں, بھگوان کی لیلائیں سب چھپے ہیں اسی روپ سے. اس میں بتا رہے ہیں نام اشٹکم میں کہ جب کوئی شدھ نام لے لیتا ہے تو کیسے ان کے سامنے بھگوان کا روپ پرکٹ ہوتا ہے. اس میں لکھا ہے سدھی شرتے جنارتی رسے رمیا چیت گھن سکھ سوروپینے نام گوکل مہت سیوائتے کرشن پورن وپوشے نمو نمہ. کیا ہے کہ اوہ ہری نام, آپ تو اپنے شناگت بھکت کے سارے دکھوں کو دور کر دیتے ہیں, اور آپ اپنے دیویہ روپ میں بہت ہی جسے کہتے ہیں سکھ سوروپ نے رمیا چیت گھنا بہت ہی گھنا جسے کہتے ہیں ان کا آنند ہے. رمیا چیت گھنا چھوٹا موٹا آنند نہیں ہے, بہت گھنا ان کا آنند ہے. اور گوکل نواسیوں کو آپ ابیرل آنند اور ابیرل جسے کہتے ہیں اتسو ہی اتسو دینے والے ہیں, اور آپ ہمیشہ اپنی مدھرتا میں ستھت رہتے ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ یہی ہری نام ہمارے سامنے وپوشے کرشن پورن وپوشے نمو نمہ, ایسے کرشن جن کا شریر پورن روپ سے دیویہ ہے اس کا ہم درشن کر پائیں گے. تو اس ہری نام جب ہم شدھ نام لیتے ہیں تو بھگوان کا روپ, بھگوان کی لیلائیں ہمارے سامنے پرکٹ ہوتی ہیں. تو اس پورے مادھیم میں جو ہری نام ہمیں گرو کے مادھیم سے ملا ہے اس پہ ہمیں پورا وشواس ہونا چاہیے. یہ جو دیویہ شبد دھونی ہے یہ ہم سب بھکتوں کے اوپر اتنی وشیش کرپا ہے, ایک تو ہری نام کے دوارا ہم کو پراپت ہوتی ہے, اور دوسرا دیویہ شبد دھونی کیسے پرکٹ ہوتی ہے ہمارے سامنے. ایک تو ہری نام کے دوارا, اور بھی دیویہ شبد دھونی کا اور کوئی بھی کارن ہے پرکٹ ہونے کا, اور کوئی بھی روپ ہے؟ ہاں بھاگوت نتیم بھاگوت سیویا, یہ جو پرتی دن بھاگوت کا ککشا ہوتی ہے یہ بھی دیویہ شبد دھونی ہے, اس کو ہمیں پورا لابھ اٹھانا چاہیے. ربھی بولا کہ نتیم بھاگوت سیویا, کیونکہ جیسے کہ ہمارے پاس ایک سلائڈ شو ہے آپ کو کبھی دکھائیں گے,
विमला प्रसाद प्रभु जी विशेष समझ ने तैयार किया उसको, कि एक जापान के डॉक्टर थे वैज्ञानिक, उन्होंने आविष्कार किया, क्या आविष्कार किया कि एक वो डैम के पास गए, बांध के पास, और वहां जाकर उन्होंने गंदी गंदी गालियां निकाली और अपशब्द बोले, और फिर उस पानी की फोटो खींच ली, और फिर उस पानी के मॉलिक्यूल्स क्रिस्टल्स को देखा गया बहुत ही विकृत रूप में, गंदे गंदे, उसमें कोई अरेंजमेंट नहीं, कुछ नहीं, बहुत ही विकृत रूप में वो पानी के जो क्रिस्टल थे वो स्थित थे। फिर उन्होंने वही डैम में खड़े होकर उन्होंने संस्कृत के श्लोकों का उच्चारण किया और फिर फोटो ली, और फिर जब फोटो ली तो देखा कि जो पानी के जो क्रिस्टल थे बिल्कुल सुंदर सुसज्जित रूप में थे। तो इससे मालूम चलता है कि शब्द ध्वनि का कितना असर पड़ता है। आप खुद देख लीजिए, अगर हमारे कहीं ऐसी जगह जाते हैं जहां लड़ाइयां हो रही हैं और जहां पे एक दूसरे को गाली गलौच हो रहा है, तो हमारा भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, हम भी क्रोधित हो जाएंगे, हमारे अंदर विकार होना शुरू हो जाएगा। हम मंदिर में आते हैं तो मंदिर में दिव्य शब्द ध्वनि होती है तो हमारा मन एकदम शांत हो जाता है। तो इसका तो क्योंकि आज के कलयुग में प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाया जाता है, इसलिए वो पानी की फोटो खींचकर वो क्रिस्टल्स की फोटो दिखाई जाती है। अब तो मान जाओ साफ साफ दिखाई दे रहा है। और फिर उन्होंने ये बोला, इतनी सुंदर बात बोली कि हमारे शरीर के अंदर कितने प्रतिशत पानी होता है? 65%। 65% पानी होता है। तो अगर उस पानी के सामने गलत गंदी गंदी गालियां दी गई तो उसके पानी का क्या हाल हुआ? विकृत रूप में आ गया। और सुंदर सुंदर दिव्य श्लोकों का उच्चारण किया गया तो सुसज्जित हो गया। इसी ढंग से अगर हम अपने आप को दिव्य शब्द ध्वनि में रखते हैं तो भौतिक आध्यात्मिक लाभ तो होंगे ही होंगे, भौतिक लाभ भी होंगे। इसलिए देखा जाता है कि जो लोग हरे कृष्ण महामंत्र का अच्छे ढंग से जप कर रहे हैं, लोग बोलते हैं हमारा ब्लड प्रेशर ठीक हो गया और ये सब ठीक हो गया, सब बीमारियां दूर हो गई, क्योंकि दिव्य शब्द ध्वनि का असर है। तो हमें मालूम होना चाहिए कि वासुदेव परागति, कि कृष्ण ही परम लक्ष्य है और कृष्ण परम लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकते हैं इन्हीं दिव्य शब्द ध्वनि के माध्यम से। एक बार श्रील प्रभुपाद से एक वैज्ञानिक डॉक्टर बेनफोर्ड ने पूछा, ये वार्तालाप आती है जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी में, तो डॉक्टर बेनफोर्ड ने पूछा कि आपका क्या होगा, आपका और आपके शिष्यों का, आप लोगों का क्या होगा? तो प्रभुपाद बड़े कॉन्फिडेंटली बोले, वी आर गोइंग बैक टू गॉडहेड, हम तो वापस जा रहे हैं कृष्ण के धाम। तो प्रभुपाद ने ऐसा नहीं बोल दिया कि भावुकता से उनको हराने के लिए ऐसा बोल रहा है, वी आर गोइंग टू बैक टू गॉड, हम वापस धाम जा रहे हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि हमें मालूम है कृष्ण का नाम, कृष्ण का पता, उनका एड्रेस, उनकी लीलाएं, उनका घर, हमें सब कुछ मालूम है। भगवान गीता में कह गए हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं योगेति तत्वता त्यक्ता देहम पुनर्दम नायति मामे दिशा अर्जुन, कि जो मेरे जन्म कर्मों की दिव्यता को समझ जाएगा वो सीधा मेरे धाम आ जाएगा। तो केवल हरि नाम के माध्यम से ही हम भगवान के जन्म और कर्मों की दिव्यता को समझ सकते हैं। तो ये दृढ़ विश्वास होना चाहिए। इतने कॉन्फिडेंट प्रभुपाद ने बोला कि हम तो जा रहे हैं भगवत धाम वापिस, क्योंकि हमें मालूम है कि भगवान का एड्रेस क्या है, भगवान कहाँ रहते हैं, भगवान का नाम क्या है। एक बार प्रभुपाद से किसी इंटरव्यू में किसी से पूछा जा रहा था कि क्रिश्चियनिटी में भी कहा गया है कि दाउ शैल चैंड द होली नेम ऑफ द लॉर्ड, कि भगवान के नाम का उच्चारण करो, है ना। लेकिन देखिए कितनी बड़ी बात है, उनको ये नहीं मालूम भगवान का नाम क्या है। पूरे बाइबल में भगवान का नाम नहीं लिखा, तो किसका उच्चारण करें? जीसस क्राइस्ट का नाम है, वो तो भगवान के पुत्र का नाम है, अब उनको मालूम ही नहीं। और लिखा हुआ है दाउ शैल चैंड द होली नेम ऑफ द लॉर्ड, कि भगवान के नाम का उच्चारण करो। तो प्रभुपाद कहते हैं भाई आपको मालूम नहीं है भगवान के नाम का उच्चारण करो, आपको मालूम नहीं भगवान का नाम क्या है, तो हम बता रहे हैं ना कृष्ण है, तो ले लो कृष्ण का नाम, क्या समस्या है? तो देखिए कितनी महान हम वैदिक संस्कृति कितनी महान है। उन्होंने कहा कि भगवान जीसस क्राइस्ट ने आपको भगवान का नाम इसलिए नहीं बताया, उन्होंने बता दिया कि मैं आप लोगों को पूर्ण ज्ञान नहीं दे रहा हूं, अभी आप पूर्ण ज्ञान पाने के योग्य नहीं है, तो भगवान का नाम है कृष्ण, उसका नाम लो। तो हमको मालूम है कृष्ण का नाम कहाँ क्या है, कृष्ण का रूप कैसा है, कृष्ण की लीलाएं कैसी हैं, कृष्ण कहाँ रहते हैं, ये सब केवल इस शब्द ध्वनि के द्वारा मालूम चलेगा। जैसे कि यहां से किसी को अमेरिका भी जाना है तो शब्द ध्वनि के माध्यम से वो मालूम करता है कि कैसे है, कहाँ रहूंगा, किधर रहूंगा, सब शब्द ध्वनि के माध्यम से। इसी ढंग से हमारा लक्ष्य है कृष्ण के लोक में जाना, तो केवल शब्द ध्वनि के माध्यम से हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे, इसी शब्द ध्वनि के माध्यम से हम जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और श्री भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर महाराज कहते हैं कि इस शब्द ध्वनि का हम निरंतर उच्चारण करते रहें, इसका केवल एक ही उपाय है कि हम निरंतर वैष्णव सेवा में जुड़े। जितनी हम वैष्णव सेवा करेंगे उतना हमारा नाम के प्रति रुचि उत्पन्न होगी। वैष्णव सेवा एक माध्यम है नाम के प्रति रुचि उत्पन्न करने का। अगर हम वैष्णव के प्रति सेवा नहीं कर रहे, वैष्णवों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, तो फिर ये हरि नाम हमारी जीवा पे प्रकट नहीं होगा। रूप गोस्वामी जी प्रार्थना कर रहे हैं हरि नाम से कि आप मेरी जीवा पर आकर नाचिए। वो तभी नाचेंगे हरि नाम हमारी जीवा पर जब हम वैष्णवों के साथ मधुर संबंध स्थापित कर पाएंगे, द्वेष रहित होकर प्रेम पूर्वक संबंध स्थापित करेंगे, तभी हरि नाम के प्रति रुचि उत्पन्न होगी। तभी शब्द ध्वनि के माध्यम से हम भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं को समझ पाएंगे। तो इस सारा के सारे इस विज्ञान को हमने बहुत सूक्ष्मता से समझने का प्रयास करना चाहिए, यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। हरे कृष्ण। इसलिए कोई प्रश्न या टिप्पणी? नहीं नहीं, इसको ऐसा मत समझिए कि जो गायें दूध नहीं देती उसकी सेवा नहीं करनी चाहिए, ऐसा नहीं कहा गया। ये फल की बात बताई गई है कि शब्द बड़े निष्णातम ना निष्णात परे, यदि कि सारे सारे वैदिक शास्त्र पढ़ लिए लेकिन भगवान के प्रति श्रद्धा उत्पन्न नहीं हुई, तो ये वैसे ही हुआ, श्रम हो गया उस गाय की आप सेवा करते रहे जो दूध नहीं देती। ऐसा नहीं कहा कि उस गाय की सेवा नहीं करनी चाहिए, उसको मार देना चाहिए। उदाहरण उसी ढंग से है कि आपने जो परिश्रम किया उसका क्या फल मिला आपको? कोई फल नहीं मिला। ये उदाहरण उसके लिए दिया गया है ना, उसका मतलब ये नहीं कि सेवा नहीं करनी चाहिए, गाय की तो बहुत महिमा है ही है। हाँ
ये
मतलब ये है कि पापों के मतलब कई पहाड़ मतलब टूट
जाएंगे
या सारे पाप? इसमें लिखा है, पढ़ लेते हैं दोबारा से। सेकंड या इफ अ पर्सन चैंट्स योर नेम इवन वंस एंड देयर टू इवन देन यू कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय द मॉन्स्टर्स माउंटेन ऑफ सिंह। कम्प्लीटली लिखा है इसमें, कम्प्लीटली। हाँ इसमें अगले में उसमें लिखा हुआ है नाम अष्टकम में कि यद ब्रह्म साक्षात कृति निष्ठयापी विनाशम अयति बिना न भोगी अपैति नाम स्फुरतेन तत्ते प्राधान कर्मेति विरोति वेदा। कि एक व्यक्ति ब्रह्म में प्रवेश कर सकता है बहुत तपस्या करके ध्यान लेके, फिर भी वो अपने प्रारब्ध कर्मों को पूर्ण रूप से मुक्त नहीं कर पाया। लिखा हुआ है। और उनको फिर तभी ब्रह्म उनको अपने इन प्रारब्ध कर्मों को पूरा करने के लिए दुख और सुख सहन करने के लिए नीचे आना पड़ेगा। इतनी महिमा बताई है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि पुण्य कर्मों का संचय करके ही हम भक्ति में आते हैं, तो कृष्ण कॉन्शियस में आने के बाद फिर हमें पुण्य कर्म, देखिए जब हम पुण्य कर्म कर रहे थे तो हमें लक्ष्य नहीं मालूम था, अब जब लक्ष्य मालूम चल गया है फिर केवल सर्वधर्मान परित्यजत माम एकम शरणम मिल जाए, फिर केवल मेरी शरण में आओ, है ना। तो फिर हम अपने 100% जो हमारी शक्तियां हैं वो केवल कृष्ण की भक्ति के लिए होने चाहिए। जब मालूम चल गया कृष्ण लक्ष्य है तो फिर क्यों हम इधर उधर ध्यान वो करें? जब तक लक्ष्य नहीं मालूम तो हम कर रहे हैं पुण्य, तो हमारे सुकृति इकट्ठी हो रही है।
हाँ।
जहां पे जो पुण्य कर्म है इसका अर्थ केवल कर्मकांड ही नहीं है। पुण्य कर्म एक बहुत बड़ा जिसे कहते हैं टॉपिक है उसमें, है ना। तो केवल पुण्य कर्म केवल यही नहीं है कि कर्मकांड करते 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 कोई कृष्ण का संग प्राप्त कर लेगा, ऐसा अर्थ नहीं है। कर्मकांड के माध्यम से हम कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकते, केवल भक्ति के माध्यम से हम कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, नाव भाष से मुक्ति मिल सकती है। नाव भाष से मुक्ति मिल सकती है, शुद्ध नाम से प्रेम मिलेगा। नवाभास से शुद्ध नाम, नाम अपराध से नवाभास, ये सारे के सारे जो स्टेजेस पढ़ने केवल हरि नाम से, कोई लिफ्ट और कोई नहीं है, कोई शॉर्टकट और कोई नहीं है, यही शॉर्टकट है ध्यान पूर्वक जप और वैष्णव सेवा।
हरि नाम से अनेक पापों का
ऐसे होगा भी नहीं,
ऐसे होगा नहीं।
क्योंकि जो व्यक्ति पाप कर रहा है वो ऐसा नहीं होगा कि मैं प्लानिंग करके चलूं और फिर लास्ट में कभी भी हरि नाम ले लूं, ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा। हरि नाम भी हमारे जीवा पे आता है, ये विशेष कृपा से आता है। या जीवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, जिसकी जीवा पे हरि नाम आता है कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। साधारण व्यक्ति के जीवा पे नाम नहीं आएगा हरि नाम। हम अपनी इच्छा से हरि नाम नहीं ले पा रहे, अपनी शक्ति से हम हरि नाम नहीं ले पा रहे, अपनी प्लानिंग से योजनाओं से हरि नाम नहीं ले पा रहे। ये केवल
उसको हरि नाम का कोई फायदा नहीं
है। जो
जिसने सेल्फ जो अपने जिसने ये सोचा कि मैं ये सारे पाप कर लूं और बाद में हरि नाम ले लूं, उसके तो हरि नाम का भी कोई फायदा नहीं।
क्यों नहीं, हरि नाम का फिर भी फायदा होगा अगर वो किसी भी ढंग से ले ले, ये इनके इन प्रकार उसको सुनाई भी दे जाता है, क्यों नहीं होगा, पाप फिर भी दूर होगा। लेकिन कोई प्लानिंग करके नाम के बल पर पाप कर रहा है
वो फिर नहीं होगा।
हाँ, वो नहीं होगा। हर आध्यात्मिक वस्तु जो है वो परम धरातल पर एब्सोल्यूट लेवल पे है। हाँ, शुद्ध भक्त और शुद्ध भक्त के नाम में भी कोई अंतर नहीं है। हम प्रभुपाद कहीं भी कहते हैं तो हमारे अंदर एक शक्ति का संचालन हो जाता है, है ना। हाँ, शुद्ध भक्त के स्मरण मात्र से ही हमारे पाप करने की प्रवृत्ति समाप्त हो जाती है। सौ लोग मैंने कम कहा था, सौ भी नहीं कहा था मेरे कम से भैया, कि मेरे जैसे सौ लोग भी हों तो मैं पूरे विश्व को कृष्ण भावित करता हूँ। प्रभुपाद
18 या 18 दिनों।
हाँ, कुछ कम लोग, सौ से भी कम लोग थे। यस प्रभु जी, हाँ, बिल्कुल उधार हो। शिल प्रभुपाद पढ़ लिया, शिल प्रभुपाद बोल दिया, सुन लिया, उधार हो गया। तो हम लोग जिनका जन्म भारत में हुआ है बहुत भाग्यशाली हैं। राम कृष्ण सुनते ही रहते हैं, हम तो कानों में पढ़ता ही रहता है, तो बहुत सुकृतियां इकट्ठी होती है ना। ठीक है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथा श्रीमद भागवतम की, ग्रंथा श्री चैतन्य चरितामृत की, हरिनाम प्रभु की, हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की, अनंत कोटि वैष्णविंद की, निताय गोत्रे वनंदे।